हरे कृष्णा दिस लेक्चर ऑन गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव गिवन इन द्वारका टेंपल मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास ऑन 5th July 2016 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो 15 दिनों से छुप करके बैठे थे तो उनके दर्शन आज हुए हैं तो अब उनसे उनका प्रणाम करेंगे ताकि आज इतने दिनों बाद जो उनका नव यौवन दर्शन हुआ है नए रूप में तो इसी तरह से स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी छुप कर के रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और पूरे साल वो भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। लोग इच्छाएँ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं तो जगन्नाथ पूरी करते हैं। तो 15 दिन जब लक्ष्मी जी जो हैं जगन्नाथ जी की भार्या उनकी पत्नी वो कहती हैं पूरे साल तो आप बिजी रहते हैं, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं एक लीला करता हूँ, स्नान यात्रा लीला, और स्नान यात्रा के बाद फिर मैं 15 दिन छुप जाता हूँ। तो फिर 15 दिन भगवान लक्ष्मी जी के साथ में पर्सनल अपनी रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं और 15 दिन ही देते हैं उनको, ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ फिर 15 दिन के बाद भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए दोबारा दर्शन देते हैं। तो आज के दिन और गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है और फिर कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। कृपालु जगन्नाथ सबके ऊपर कृपा करने के लिए रथ के ऊपर आरूढ़ होकर निकलते हैं रास्ते पे, कि हर एक व्यक्ति मंदिर तक नहीं आ सकता, कोई बात नहीं है, मैं आऊँगा दर्शन देने के लिए। तो इस तरह से जगन्नाथ कृपालु हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी का हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो आप लोग सब साथ में दोहरा सकते हैं। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ते विनाशनः त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पतितां भवसागरे। इसका अर्थ है देव देव जगन्नाथ, जो जगन्नाथ देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जगन्नाथ जो कि जगत के नाथ हैं, खाली उड़ीसा के नाथ नहीं है, उड़िया नाथ नहीं है, भगवान जो है वो जगत के नाथ हैं। लेकिन उड़ीसा में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं नहीं जगन्नाथ तो सिर्फ हमारे हैं, और ऐसा लोगों को फील भी होता है पूरे विश्व में कि जगन्नाथ जी सिर्फ उड़ीसा के हैं, लेकिन नहीं, जगन्नाथ प्रभुपाद जी ने कहा वो जगत के नाथ है, खाली उड़ीसा नाथ नहीं है, है ना। तो इस तरह से इसमें बता रहे हैं प्रपन्नार्ति विनाशनः, और उनसे हम क्या करते हैं उनकी शरण में जाकर उनसे कहते हैं आप हमारे को तनाव जितना भी टेंशन है एंजाइटी है उसको क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष का मतलब है वो जिनके कमल जैसे नयन हैं, जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल जैसी हैं। तो ऐसे सुंदर जगन्नाथ जो हैं कमल नयन वाले, उनके हम क्या कहते हैं त्राहि माम कब करता है व्यक्ति, जब परेशान होता है, है? तो हम जब इस संसार की दावन अग्नि से परेशान है तो हम कहते हैं त्राहि माम बचा लो जगन्नाथ। पतिताम भव सागरे, और जो भव सागर में फंस गया हूँ उससे क्या कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। और जो इनके बड़े भाई हैं बलदेव, बड़ा सा मुकुट लगा के बैठे हैं आज, तो जो ये बलराम हैं, ये बलराम के लिए हम प्रणाम करेंगे, सब लोग साथ में दोहरा सकते हैं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धारा, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा। इसका मतलब है नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, बलवान जितने हैं शक्तिशाली संसार के पावरफुल योद्धा, उन सबसे शक्तिशाली कौन है, बलराम, बलिनाम श्रेष्ठ है। नमस्ते धरणी धारा, और वो जब शेषनाग का अवतार लेकर बलराम प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण करते हैं, इसलिए क्या बोला गया, नमस्ते धरणी धारा, जो धरती है उसको धारण करने वाले भगवान। प्रलंबारे नमस्तस्तु, प्रलंबारे मतलब प्रलंबासुर के आरे, आरे मतलब या आरी मतलब होता है दुश्मन, प्रलंबारे ऐसे प्रलंबासुर का वध करने वाले भगवान को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा, और अब हम इनको भी क्या बोल रहे हैं, त्राहिमाम बचा लो, हे बलदेव आज इतने दिनों बाद दर्शन दे रहे हो तो क्या करो, बचा लो। कृष्ण पूर्वजा, कृष्ण पूर्वज क्यों बोला गया, क्योंकि कृष्ण से बड़े होने की लीला कर रहे हैं नहीं। असलियत में देखा जाए तो मूल आदि भगवान कृष्ण है और उनके विस्तार हैं बलराम, लेकिन यहाँ पर बताया गया है जब भगवान लीला करते हैं द्वापर में तो भगवान बलदेव बलराम जी को अपना बड़ा भाई बना करके आते हैं लीला करने। और जो सुभद्रा रानी है, भद्रा का मतलब होता है माया देवी और सुभद्रा का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो योग माया और महामाया, महामाया है भद्रा और योग माया है सुभद्रा। तो जो सुभद्रा है कृष्ण भगवान की बहन है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, योग माया जो भगवान की अनेकों लीलाओं में उनकी मदद करती है। और ऐसी सुभद्रा जी को हम प्रणाम करेंगे, आप लोग बोल सकते हैं जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्धि परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रा त्वयम् सर्वेषां भद्रदायिनी, जय देवी भक्ति दात्री। तो जो देवी हैं ये क्या करती हैं, ये देखती हैं कि जगन्नाथ तो बड़े कृपालु हैं, हर एक को भक्त बना देते हैं, लेकिन सुभद्रा चेक करती हैं कौन भक्त बनने योग्य है, उसके सामने भगवान को प्रकट करती हैं। वरना अन्यथा ज्यादातर लोगों के सामने भगवान क्या है, एक लकड़ी की मूर्ति है, लेकिन जगत के नाथ हैं, स्वयं भगवान विराजमान है, ऐसी लीला कौन कर सकता है, कृपा से सिर्फ सुभद्रा जी की कृपा से प्राप्त होती है। रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसिद्धि परमेश्वरी, और ये कैसी है, ईश्वर की भी परमेश्वरी है हा? और जय देवी सुभद्रा त्वयम, आप कैसी हैं सुभद्र, जो भी जीवन में ऑस्पिशियसनेस है, पवित्रता, जो अच्छी चीजें हमें प्रदान करने वाली हैं, जय देवी सुभद्रा त्वयम् सर्वेषां भद्रदायिनी, और सदा हमें क्या प्रदान करो, ऑस्पिशियसनेस, भद्रता है ना। कहते हैं कि मंगल, मंगल प्रदान करो हमको, लोग गणेश जी की मूर्ति लगा के कहते हैं मंगल देवा, इनसे मंगल कार्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का नाम उच्चारण करता है या उनकी फोटो भी देख लेता है तो जीवन भर क्या रहेगा उसके लाइफ में, सुभद्रा, हमेशा भद्र, उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस हमेशा रहेगी। और भगवान के साथ में एक छोटा सा डंडा रहता है, देखा कुछ लोगों को पता ही नहीं वो क्या है, कहते हैं वो जगन्नाथ जी का डंडा ले आओ, जगन्नाथ जी का डंडा नहीं, उसका नाम है सुदर्शन। तो लोग सोचते हैं अच्छा डंडे का नाम सुदर्शन है, लेकिन नहीं, भगवान के साथ में जो डंडा है वो भगवान का चक्र है, और भगवान की लीलाओं में हर एक चीज चिन्मयी है, चिन्मयी मतलब सब चीजें बोलती हैं, चलती हैं, हाँ। इसी तरह से सुदर्शन जो है वो भगवान का बड़ा ही प्रभावशाली है, और वो भगवान के तेज को लेकर के प्रकट होता है, और भगवान की इच्छा मात्र से भक्तों पर कृपा करता है, भक्तों की रक्षा करता है और अभक्तों का नाश करता है। तो जो भक्त हैं उनके जीवन में अगर कोई परेशानी आए और वो जोर जोर से चिल्लाएं सुदर्शन सुदर्शन जगन्नाथ जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी का सुदर्शन उनकी रक्षा करता है। जैसे आप जानते हैं अम्बरीश महाराज की कथा में, अम्बरीश महाराज को किसने बचाया, सुदर्शन ने, सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की रक्षा करी। तो ऐसे सुदर्शन को हम प्रणाम करेंगे, सब लोग मिल करके बोल सकते हैं सुदर्शन महाज्वला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानंदस्य मे नित्यम विष्णुर्मार्ग्यम प्रदासये। तो इसका मतलब है सुदर्शन महाज्वला, ऐसा सुदर्शन चक्र है, जब ये प्रकट होता है तो ऐसा लगता है करोड़ों करोड़ों सूर्यदेव, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों की जो रोशनी है उतनी गर्मी एक सुदर्शन चक्र के अंदर है। तो ये खाली डंडा नहीं है, एक सूरज के नीचे 12 बजे खड़े हो जाए व्यक्ति जुलाई के महीने में जून के महीने में जल जाता है। कोटि सूर्य समप्रभा, इतनी शक्ति है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य की शक्ति उस सुदर्शन के अंदर है, और उसको भगवान अपनी सिर्फ उंगली पर धारण करते हैं तो उन जगन्नाथ में कितनी शक्ति है, अचिंत्य, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। अज्ञान अंधस्य मैं नित्यम, और मैं किसमें हूँ, सदा अज्ञान में हूँ, अंधा हो चुका हूँ हमेशा कहता रहा। तो आप हमें क्या करिए, इस अज्ञानता से बाहर निकालिए, इस अज्ञानता को नष्ट करिए। हे सुदर्शन, विष्णु मार्ग, जो विष्णु का जो मार्ग है, वैकुंठ धाम का मार्ग, वो क्या करिए हमको, प्रदरा से वो हमको दिखाइए आप। तो ऐसी कृपा सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, जिसे जगन्नाथ पुरी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र स्कंद पुराण में बताया है कि वहां पे एक राजा इंद्रद्युम्न थे, जिसकी कथा आप कल सुनेंगे, कि राजा आप पहले भी सुनी है आपने संडे के दिन, कि जगन्नाथ जी जो है वो राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थनाओं पर नीलमाधव विग्रह से प्रकट होते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। तो जो ये जगन्नाथ बलदेव हैं, इनकी कथा में हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो जगन्नाथ हैं, वो द्वापर युग में एक बार लीला हो रही थी, और उस लीला से जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं, है ना। और जगन्नाथ प्रकट होने के बाद क्या करते हैं, नारद जी जब दर्शन करते हैं उनके, हुआ क्या कि एक सभा चल रही थी कुरुक्षेत्र में, और वहां पर सारे द्वारकावासी आए थे स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर में, कुरुक्षेत्र के स्थान में। वृंदावन वालों ने सोचा कि ये द्वारका में रहने वाले भगवान हमें तो भूल ही गए, कभी हमसे मिलने वापिस ही नहीं आए। तो फिर वो क्या किए, आ गए कुरुक्षेत्र में भगवान का दर्शन करने। तो जो कुरुक्षेत्र में जब द्वारका वासी थे, रोहिणी मैया, यशोदा मैया और अनेक भक्त आए थे द्वारका से स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण के समय, तो उस समय पता चला कि वृंदावन वासियों ने कहा, हम सुनना चाहते हैं, है ना, वृंदावन वासियों से हम सुनना चाहते हैं कि कृष्ण ऐसी क्या लीला करते थे जो द्वारका के धीश बनने के बाद, द्वारका में रहने के बाद सदा क्या स्मरण करते रहते हैं, राधे गोपियां गोप, राधे गोपियां गोप, यही स्मरण करते हैं, ऐसा क्या है वृंदावन में। तो वो जानने के लिए उन्होंने क्या कहा, रोहिणी मैया से कहा कि आप हमें कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाइए, ऐसा क्या है वृंदावन में जिसके कारण कृष्ण द्वारका के राजा बनने के बाद भी नित्य वृंदावन का स्मरण करते हैं। तो फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया, और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि अभी अगर कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलदेव यहाँ आ गए तो क्या होगा, सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी लीलाएं सुनने के बाद में फिर द्वारकाधीश नहीं रहेंगे, वो अपना राजसी वेश छोड़ करके कहाँ चल देंगे, वृंदावन। इसलिए अभी उनको राजा बना के रखना जरूरी है, इसलिए क्या करो, सुभद्रा को सेवा दे दो कि तुम गेट के पास खड़ी रहो, और वो लोग आए तो फिर हमें बता देना। और खड़े खड़े क्या किया, सुभद्रा जी ने खिड़की से धीरे धीरे लीलाओं का सुनना, श्रवण करना शुरू किया। तो आप देखिए श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण सबसे उत्तम चीज है, और श्रवण से ही भगवान का सच्चा दर्शन होता है। जो कथा का श्रवण नहीं कर रहा, वो फिर उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसे ही श्रवण करा सुभद्रा ने जब कथाओं का, तो क्या हुआ, सुनते सुनते उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, और उनका शरीर पिघलने लगा, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो पिघलने लगा, और पिघलते पिघलते कैसा हो गया, जब हम किसी की आश्चर्यचकित बातें सुनते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाँ अच्छा ऐसा था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, और हाथ जो है उनके छोटे हो गए, और पांव भी पिघल रहे थे। तो ऐसी लीला को जब जगन्नाथ और बलदेव आए अपनी सभा से, तो उन्होंने देखा कि अरे सुभद्रा का रूप कैसा है, पांव पिघल गए, हाथ पिघल गए, और आंखें, और वो भी क्या की, भूल ही गई भावावेश में कि मुझे क्या करना था, सुरक्षा प्रदान करने थे। और वो जगन्नाथ और बलदेव भी कथाओं का श्रवण करने लगे, और सुभद्रा को देख करके उनका भी शरीर कैसा हो गया, वैसा ही जैसे सुभद्रा का हो गया। तब नारद मुनि वहां आए, और उन्होंने कहा भगवान ये कौन सा स्वरूप है आपका। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा ये मेरा जगन्नाथ रूप है, और ये मेरा शाश्वत रूप है। कहा अच्छा, तो ये कब प्रकट होगा। तो उन्होंने कहा कि जब सत्युग आता है तो मैं प्रकट होता हूँ बद्री का आश्रम में नर नारायण के रूप में, जब त्रेता युग आता है तो रामेश्वरम में मैं प्रकट होता हूँ, जब द्वापर युग आता है तो मैं द्वारकाधीश बनकर द्वारका में प्रकट होता हूँ, और जब कलयुग आता है तो मैं जगन्नाथ बनकर जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट होता हूँ। तो ये जगन्नाथ है। तो उन्होंने कहा कि भगवान अच्छा, तो आपकी क्या इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि जब मैं जगन्नाथ रूप लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आऊंगा तो फिर क्या करना, तुम लोग सब मेरा एक रथ निकालना, और उन्होंने उसमें कहा, भगवान कह रहे हैं नारद मुनि से, स्वर्ण सुगतितम साधु रथ त्रयम अलंकृतः दुकुला रत्न मालादय बहुमूल्य व्रतम महत। उन्होंने कहा स्वर्ण सुगतिम साधु, मेरे को सोने के रथ पे बिठाना और फिर रथ त्रयम अलंकृतः, और तीनों को अलंकृत करना एक रथ के ऊपर, और फिर क्या करना, दुकुला रत्न मालादय, जो ऐसे कपड़े पहना देना जो कि पूरे के पूरे माला ही माला हो, पूरे शरीर पे माला ही माला हो, इतना सुंदर तरीके से सजाना, बहुमूल्य, और बहुमूल्य जो रत्न है उनसे क्या करना, व्रतम महत, और मेरी पूरी सजावट करके मुझे ले जाना रास्ते में, तो हम कल भगवान को लेकर जाएंगे। तो भगवान का जो रथ है उसको, रथ यात्रा को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से एक नाम है घोष यात्रा, घोष घोषणा करते हैं ना, घोष यात्रा। एक है महावेदी यात्रा, अब भगवान की महावेदी, एक होती वेदी जिसे ऑल्टर कहते हैं, और महावेदी जब भगवान रथ पर चलते हैं तो उसे महावेदी कहते हैं, महावेदी यात्रा। फिर एक कहा जाता है पतित पावन यात्रा, जो लोग कभी मंदिर नहीं आते ऐसे पतितों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ कृपालु निकल जाते हैं, और फिर उनकी यात्रा को क्या कहते हैं, पतित पावन यात्रा। और एक कहते हैं नव दिन यात्रा या फिर नव यौवन यात्रा, और एक है दक्षिण अभिमुखी यात्रा, दक्षिण को अभिमुख होकर भगवान चलते हैं, और एक नाम है गुंडीचा यात्रा। तो रथ यात्रा का एक नाम क्या है, गुंडीचा यात्रा। अभी गुंडीचा कौन है, तो इंद्रद्युम्न महाराज की जो पत्नी है उनका नाम था गुंडीचा, उनके नाम से एक महल बनाया गया है जहां पर ज्यादा ऑपुलेंस नहीं है, ऐश्वर्यशाली नहीं है, वो वृंदावन की तरह घास फूस झाड़ियां पेड़ पत्ते इस तरह का है, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, बहुत ही सुंदर। तो वहां पर जाकर जो है बिल्कुल ऐसा आता है इच्छा कि ये बिल्कुल वृंदावन धाम है, तो वहां जो मंदिर है वो पूरे साल बंद रहता है, लेकिन 10 दिन के लिए वो वेदी खुलती है और वहां जगन्नाथ जी विश्राम करते हैं। तो इसलिए जब जगन्नाथ जहां रहने वाले हैं उस स्थान को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। थोड़ी भगवान आएंगे तो बिठाएंगे नहीं, आपके घर में कोई सीनियर डिवोटी आते हैं, आपके घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है तो आप क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जो जिस घर में रहते हैं उस घर की सफाई की जाती है ना, तो वो उसे कहा जाता है गुंडीचा मार्जन। तो उस गुंडीचा रानी का जो महल है उसमें जगन्नाथ जी जाकर रहते हैं, और क्यों रहते हैं, क्योंकि वृंदावन का सदा स्मरण करते हैं, है ना। तो ऐसे जो जगन्नाथ हैं, तो जगन्नाथ जी का मंदिर और गुंडीचा मंदिर, इस दोनों के बीच में लंबाई बताई गई है 2.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 800 मीटर इतनी दूरी है। और वहां से जगन्नाथ द्वारका से निकल के कहां जाते हैं, वृंदावन। क्यों, क्योंकि जब नारद मुनि ने उस वेश को देखा तो सारे के सारे ग्वाले जो थे वो जगन्नाथ को कहां ले जाना चाहते थे, वृंदावन। और उन्होंने रथ पे आरूढ़ भी कर दिया था, लेकिन भगवान ने कहा अभी नहीं, वक्त आने पर मैं जरूर वृंदावन आऊंगा। तो उस लीला को पूरा करने के लिए भगवान हर बार हर साल द्वारका अपने से निकलकर, जगन्नाथ मंदिर से निकलकर कहां जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। तो उस गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि आपका हृदय जहां पर परमात्मा वास करते हैं वो भी क्या है, क्या है, वृंदावन। जहां पर भक्त वास करते हैं, कथा वास करती है, परमात्मा वास करते हैं, वो क्या है, वृंदावन। लस्सी कचौड़ी नहीं है वृंदावन, प्रभुपाद कहते हैं स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना है। तो हमारा हृदय जो वृंदावन है ना, उस वृंदावन में परमात्मा जहां विराजमान है उसकी सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो जब हम जगन्नाथ जी का रथ खींचे तो उसका इच्छा ये होनी चाहिए कि हम जगन्नाथ जी को खींच करके अपने हृदय में बसा लें, जगन्नाथ जी के रथ को खींचें और उसको कहाँ बसाएं, अपने हृदय। तो खींचते वक्त ये नहीं हो जाना चाहिए अब कितने किलोमीटर रह गया, कितने किलोमीटर रह गया, बड़ी लंबी यात्रा है, इन लोगों का तो यही ड्रामा हर साल का, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं जगन्नाथ जी को खींच करके कहाँ ले जा रहा हूँ, अपने हृदय में, तब जगन्नाथ, वो चेतना से हम यात्रा को करें। अब जब जगन्नाथ को खींच के लाना है इस हृदय में, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तभी तो गंदे स्थान में भगवान बैठेंगे नहीं। इसीलिए एक दिन पहले रथ यात्रा से हम बनाते हैं क्या, गुंडीचा मार्जन। बताते हैं कि एक राजा नरसिम्ह देव थे, उनके समय में एक नदी बहती थी इसके रथ यात्रा के समय में। और बताते हैं कि इधर मंडल पंजी नाम की एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि एक मालिनी नाम की नदी बहती थी जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में, बिल्कुल ये 2.5-3 किलोमीटर का जो रास्ता है इसके बीच में एक नदी बहती थी। और उस समय 12th सेंचुरी में बताया गया, 12वीं शताब्दी में 6 रथ बनते थे, 3 रथ बनकर जगन्नाथ मंदिर से मालिनी नदी के किनारे आते थे और फिर बोट के ऊपर जगन्नाथ को लेके जाते थे और उधर 3 रथ तैयार रहते थे और फिर वहां से गुंडीचा मंदिर जाते थे। अमेजिंग। फिर बताया गया कि उस कुछ समय बाद राजा ने कहा कि ये नदी सूख गई है और बहुत मुश्किल होती है, तो उसको मिट्टी से भर दिया गया और आज वो दिखाई भी नहीं देती, लुप्त हो गई है। तो इस तरह से ये 6 रथ बनते थे, कितना अच्छा लगता होगा, पहले जगन्नाथ आए रथ से उतरे, फिर नाव में बैठे, फिर इस पार, फिर 3 रथ तैयार हैं, फिर उस पार गुंडीचा मंदिर। अमेजिंग। तो इस तरह से जगन्नाथ की भक्तों ने सेवा करी है। तो हमारे पास तो ना 3 रथ भी नहीं है, हमारा तो द्वारका में और भी छोटा हो गया, ना 6 रथ से कम 3, 3 से कम 1, तो अब 1 ही रथ है। अब उसे भी खींचने के लिए भक्त अगर नहीं निकलते तो हमारे से ज्यादा बेकार तो कोई नहीं है। तो हमें बोलना चाहिए अपने पड़ोसियों को जाके, रिश्तेदारों को जाके कि चलो चलो तुम लोग तो मंदिर नहीं जाते, अब जगन्नाथ स्वयं रोड पर आ गए हैं, है ना, हमने भगवान को रोडपति बना दिया है, जगतपति को, अब रोड पर आ गए हैं तुमको कृपा देने के लिए, चलो और भगवान का दर्शन करो। तो इस तरह से भगवान का दर्शन हमें करना चाहिए। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, तो हम गुंडीचा महार्जन की कथा पर आते हैं, वरना इसमें अनेकों चीज़ें समझने के लिए अभी बाकी हैं। तो जो रथ यात्रा का दिन है उसे कहते हैं शुक्ल द्वितीया का दिन, पूर्णमासी के बाद जो दूसरा दिन आता है शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा का दिन है। लेकिन गौड़िया वैष्णवों ने एकादशी जो है ना उस नेक्स्ट डे बनाई, लेकिन ये जो कैलेंडर है शुक्ल द्वितीया ये स्मार्त ब्राह्मणों के हिसाब से रथ यात्रा को 6 तारीख दिया गया, अगर वैष्णवों के हिसाब से देखें तो 7 तारीख होना चाहिए। हाँ, शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा होती है और उससे एक दिन पहले शुक्ल प्रथमा को गुंडीचा मार्जन होता है, मंदिर की सफाई होती है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले आकर गुंडीचा मंदिर जिसमें जगन्नाथ आने वाले, उन्होंने कहा कल रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ आएंगे, तो उससे पहले उस स्थान को क्या करो, साफ करो। तो हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की कृपा से प्यार श्रृंखला में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह ये गुंडीचा लीला करी। तो ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, अमोघला प्रभु जी का आदेश है कि हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो इसको संक्षिप्त में ज़्यादा प्यार ना लेते हुए। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है भगवान ने, प्रथमे काशी मिश्र प्रभु बुलाइला, परीक्षा पात्र सार्वभौमे बुलाया आनीला। उन्होंने 3 लोगों को बुलाया, काशी मिश्र और मंदिर की देखरेख करने वाले एक राजा के जो सेक्रेटरी थे मंत्री उनको बुलाया और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन 3 लोगों को बुलाया और कहा, 3 जन पशे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि क्या होना चाहिए, गुंडीचा मंदिर का मार्जन होना चाहिए। तोमार योग्य सेवा नाही मंदिर मार्जन, एक लीला करिए तोमार मन। उन्होंने कहा भगवान आप मंदिर की सफाई करेंगे, आप स्वयं कृष्ण चैतन्य रूप में आए, आप मंदिर की सफाई करेंगे, आपकी तो ये खाली क्या है, लीला है, है ना, आपका लीला करने का मन है तो चलिए हम भी आपकी लीला में सहयोग करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो जो उनका प्रेसिडेंट था राजा का मुख्य व्यक्ति, उसने कहा, नूतन एक शत घट शत समर्जिना, परीक्षा अनिया दिल प्रभु इच्छा जानिया। उन्होंने कहा महाप्रभु आपकी इच्छा हमें पता चल गई है, और उन्होंने तुरंत 100 नए घड़े मंदिर को साफ करने के लिए झाड़ू लाकर के चैतन्य महाप्रभु और उनके 3 पार्षदों को दिया। तो कितनी झाड़ू, 100 झाड़ू। तो 100 झाड़ू का मतलब कम से कम 100 लोग होने चाहिए मंदिर की सफाई करने के लिए, और साथ में चैतन्य महाप्रभु ने कहा 100 घड़े पानी। अब हमारी तरह नहीं है, पाइप है, लिखते हैं सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर, फिर भी पानी को बुरी तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन आप देखिए महाप्रभु भगवान है इसलिए वो हमें शिक्षा दे रहे हैं सेव वाटर, आज से 500 साल पहले, और ना आने वाले समय में पानी की दिक्कत होने वाली है, द्वारका में टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, कुछ दिनों में कुएं खोदने पड़ेंगे, फिर पानी नहीं निकलेगा, तो ये सारी दिक्कतें होंगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा पानी हमको, तो इस तरह से दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए महाप्रभु ने इस लीला में ये भी सिखाया हाउ टू सेव वाटर, पानी कैसे बचाएं। आगे कहते हैं, फिर उन्होंने जब ये सारी अरेंजमेंट कर लिया, पानी के 100 घड़े आ गए, 100 झाड़ू आ गई, फिर अगले दिन आरदिन प्रभाते लाया निज गणे, श्री हस्ते सवार अंगे लेपिला चंदने। भगवान ने सबको ऐसे वेलकम किया जैसे बस शादी में बुलाते हैं ना, या किसी स्पेशल फंक्शन में। ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर की सफाई, चलो गंदे वाले कपड़े पहन के चलते हैं, मंदिर की सफाई करनी है। उन्होंने कहा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सब आए और सबके मस्तक पर चंदन लगाया गया और इत्र लगाया गया और कहा कि अब चलो मंदिर की मार्जन करने के लिए। हाँ, श्री हस्ते दिले सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लय प्रभु चलीला आपनी। सबको एक एक झाड़ू पकड़ा दी और खुद एक झाड़ू लेकर भगवान जो स्वयं जगन्नाथ हैं लेकिन अपनी लीलाओं में वो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो आते हैं और फिर धीरे धीरे मंदिर की पूरे की सफाई शुरू हो जाती है। तो भगवान ने बताया है दो बार मंदिर की सफाई करी, एक बार नहीं, पहले एक बार झाड़ू से गंदगी को निकाला। तो हमें भी ऐसे ही नहीं करना चाहिए, लोग पानी से खेलने के उसमें मूड में रहते हैं, जब भी सफाई नहीं होती उससे पहले पानी खोल के हे हरि बोल पानी निकाल देते हैं। पानी नहीं, महाप्रभु ने कहा अभी पानी नहीं, पहले मिट्टी साफ करो जितनी मिट्टी है, और एक बार नहीं दो बार। और क्या करते रहे, जब वो मिट्टी साफ कर रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कितना गंदा मंदिर है ना, मंदिर वाले सफाई नहीं करते, देखो हमें बुलाते हैं मंदिर सफाई करने के लिए, हम साल में एक दिन चमकाते हैं पूरे साल चमकता है ना, हम लोग हैं एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है, ये बातें नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रेम उल्लास शोधने लयने कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। सारे भक्त क्या बोल रहे थे, कृष्णा, क्या बोल रहे थे, अभी नहीं बोल रहे सफाई के वक्त तो बोलोगे ही नहीं, पक्की बात है, कृष्णा। हाँ, तो ऐसे बोल रहे थे, एक एक को दूसरे को बुला रहे थे। और फिर धूलि धूसर तनु देखी ता शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जन। महाप्रभु का सुंदर शरीर जो था वो पूरा का पूरा एकदम पसीने से लथपथ और धूल से भरा हुआ था। अभी यहाँ पे क्या होता, थोड़ी सी मिट्टी लगी, क्या प्रभु जी आपको देख के नहीं आता सफाई करना, यहाँ मिट्टी लगा दी आपने, पानी से जाके धो के आएंगे फिर सफाई शुरू, फोटो खिंचानी है तो इसलिए सफाई नहीं, पूरा एकदम एब्जॉर्ब थे अपनी सर्विस में, महाप्रभु सफाई कर रहे हैं और सफाई करते करते शरीर से पसीना निकल रहा है और आंखों से अश्रुधार निकल रही है, और रोते रोते उनकी जो आंखों के जो कण थे, जो बूंदे थी, उससे भी मंदिर की सफाई होती थी। और जिस भक्त के ऊपर वो बूंद गिर जाती थी ना, वो कहता था हरि बोल, क्या बोलता था, आपके ऊपर किसी का पसीना गिर जाए तो क्या बोलोगे, अरे दूर हट रे, क्या पसीना गिरा रहा है, हॉरिबल हॉरिबल नहीं हॉरिबल तो ये नहीं। हाँ, भक्त के ऊपर क्या है, कृपा करते हैं तो वैष्णवों की पसीना गिर रहा है, हाँ तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो झूठा प्रसाद खाने के लिए भागते हैं, मैं प्लेट उठाऊंगा, तो यहाँ पर आज अगर किसी का पसीना गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैष्णव का पसीना गिर गया हमारे ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने सेवा करने शुरू करी, पहले आंचल विग्रह का भोजन रखा जाता है उस स्थान की सफाई करी, उसके बाद में आंगन की सफाई करी, और फिर उसके बाद जो निज आश्रम थे, मतलब जहाँ ब्रह्मचारी रहते हैं, गृहस्था रहते हैं, जहाँ पर बुक शॉप्स हैं, ऐसे स्थानों की आश्रमों की सफाई करी। और फिर क्या कर रहे थे सफाई करने के बाद में, ये नहीं कर रहे थे सफाई कर दी और बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी ली, नींबू पानी पी लिया, जैसे मंदिर में पिलाया जाएगा तो ज़्यादातर तो नींबू पानी पीने में या फोटो खिंचाने में रह जाते हैं हमारे जैसे, बाकी भक्त तो सेवा करते हैं। तो उसमें बताते हैं किसी भक्त ने कुर्ता तक नहीं पहना था, तृण धूली झिंकर सब एकत्र करिया, बाहिर वास लैया फैलाए बाहिर करिया। अपना जो बाहिर वास था उनका, उसमें महाप्रभु सारा गंदगी भर लेते थे और गंदगी भर के फिर बाहर जाके डालते थे, है ना। तो इस तरह से सभी भक्तों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम सब भी क्या करो, अपने बाहिर वास को चमकाने में मत लगाओ, इसमें क्या करो, जगन्नाथ जी की जो बची हुई रेमिनेंट्स धूली है उसको अपने बाहिर वास में भरो और ले जाकर कहाँ डालो, बाहर इकट्ठा करो। तो अपने कुर्ता भी नहीं पहना उन्होंने, दीनहीन स्थिति में उस कुर्ते में और उस बाहिर वास में क्या भर रहे हैं, गंदगी भर के ले जा रहे हैं। हमें तो बोलते रहेंगे हमें कुछ टोकरी दे दो, कुछ सफाई करने के लिए सामान दे दो, हमको ऐसा दे दो, हमको वैसा दे दो, हमारे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए, मैं चेंज करके आता हूँ, ये सब चीजें नहीं, जिस स्थिति में उसमें लग जाए बस भगवान की सेवा में। और फिर उन्होंने कहा, महाप्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहे, अब भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ना तो ये टेम्पल अथॉरिटी कह रही है, ना जीबीसी कह रही है, ना इस्कॉन कह रहा है, ये कौन कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। प्रभु कहे के कत करिया छे समार्जन, तृण धूली देखिला जानीबा परिश्रम। जानीबा परिश्रम, कितना परिश्रम आपने किया है कैसे पता चलेगा, प्रभु कहे के कत करिया छा समार्जन, कितना समार्जन किया तुमने, कितनी सफाई करी, तृण धूली देखिला। जब पता चलेगा कितना कितनी इकट्ठा करा ना मिट्टी, उसके ढेर को देखकर, हाँ टेकरे को देखकर पता चलेगा आपने सफाई की भी की नहीं की। तो महाप्रभु ने इस तरह से सफाई करने के लिए बोला और सब हैरान थे। महाप्रभु सिर्फ ऑल्टर की सेवा कर रहे थे और लोग इधर उधर सारे गंदे स्थानों की सेवा कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु क्योंकि घुस करके इच्छा से भगवान को प्रतिस्थापित करने के लिए सफाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, सबार झायटन भोजा एकत्र करिला, सबा हिते प्रभु भोजा अधिक हईला। सब लोग अपनी अपनी मेहनत करते थे और सबसे ज्यादा कचरा किसका निकलता था, चैतन्य महाप्रभु के बाहरवास से, और उनका ढेर ऊंचा होता जा रहा है और बाकियों का छोटा छोटा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार के कारण वो पूरी तरह से घुस नहीं पा रहे थे उस सेवा में। मैं करूंगा, मैं झाड़ू की सेवा, अरे बुलाया है ना, मना भी नहीं कर सकते, आश्रय क्लास ज्वाइन किया है, कांग्रीगेशन में है, आना पड़ता है, इसलिए झाड़ू लेके थोड़ा बहुत कर देंगे, सफाई का मूड नहीं हमारा। इस तरह से घुस करके महाप्रभु ने सफाई करी। और फिर क्या हुआ, इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर को धोया और छत दीवारें फर्श सिंहासन कमरे और इस तरह से सारी चीजों को भगवान चैतन्य महाप्रभु धोते जा रहे हैं। महाप्रभु ने एक और अच्छा कार्य किया, महाप्रभु ने जो पानी निकलने का स्थान था ना, उस स्थान के ऊपर क्या कर दिया, एक कपड़ा लगा दिया, ताकि जो मंदिर के अंदर से पानी बाहर ना निकले। और जितने मटके थे उनको बड़े ही ध्यान पूर्वक मटकों को डाला जा रहा था, उस स्थान के ऊपर सफाई चल रही थी, और जितना पानी नीचे इकट्ठा होता था उसी से दीवारों की सफाई होती थी। ये नहीं कि वाइपर कर दिया फिर दोबारा पानी, फिर वाइपर कर दिया फिर दोबारा पानी, ऐसे नहीं, उसी स्थान को पानी से धोते जा रहे ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर भी मटकों में पानी जब कम पड़ता था तो भक्त दौड़ दौड़ कर जाते थे, कुओं से पानी भरते थे, और जब पास के कुएं समाप्त हो गए तो दूर दूर के कुओं से पानी भर भर के लाते थे। और कई बार क्या होता था कि जब मटके लेकर आ रहे हैं ना, तो हरि बोल कृष्णा कृष्णा बोलते बोलते इतने मग्न है सेवा में कि टकरा गए, मटके टकरा जाते थे, और टकराने के बाद क्या, फूट जाते थे। तब भी को फिर भागना पड़ता था भक्त को कि जल्दी करो, महाप्रभु कहेंगे घड़ा, तो उनको एक घड़ा पानी का भर के देना पड़ेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर हमारा अपराध हो जाएगा, महाप्रभु ने मांगा और हम दे नहीं पाए। तो इस तरह से भक्तों की सेवा चल रही थी। तो एक भक्त ने उसमें अपना काम कर लिया, उसी के अंदर उसने सेवा में क्या किया, एक घड़ा भर के लाया और कहते हैं बहुत सुंदर, केहा जल आनी देया महाप्रभु करे, केहा जल देह तार चरण उपरे। उसने सोचा बहुत अच्छा मौका है चरण अभिषेक करने का, महाप्रभु तो अपनी सेवा में बिजी है, मैं मटका लेके डाल देता हूँ और पानी पी लेता हूँ, क्योंकि भाई चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भक्त पदे धूली भक्त पदे जल भुक्त मुक्त अवशेष तीन महाबल। तो तीन महाबल हैं तो मैं क्या करता हूँ, भक्त पदे जल ले लेता हूँ चैतन्य महाप्रभु का स्वयं। अब भगवान का अभिषेक करने का मौका तो तब मिलता है, पहले दीक्षा लो फिर ब्राह्मण दीक्षा लो फिर अभिषेक करने का मौका है, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, सफाई करते करते डाल दो पानी। तो उसने क्या किया, केहा लुकाई करे से ही जलापान, केहा मांगी लय केहे अन्य करे दान। और जो उसके चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे जो पानी गिरा उसको उसने क्या किया, पीने लगा, और दूसरे लोग भी मांगने लगे हमें भी पिलाओ। तो इस तरह से वो सब लोग क्या कर रहे थे, पानी का उसने पान करना शुरू कर दिया। और भगवान ने कहा कि जो सफाई करने की शक्ति है ये कहाँ से मिल रही थी, ये कहे से कहे कृष्ण नाम हैला संकेत सब काम। जो लोग कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे थे वो लोग थक रहे थे, उनसे मटके नहीं उठाए जा रहे थे, वो बार बार उनकी झाड़ू टूट जाती थी, उनका मन नहीं लगता था सेवा में। लेकिन जो लोग कृष्ण 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 करके सफाई कर रहे थे, या फिर बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो इस तरह से वो सफाई कर रहे थे, और सफाई करते करते क्या कर रहे थे, कृष्ण नाम ले रहे थे, और कृष्ण नाम लेने से क्या था, उनको शक्ति प्राप्त हो रही थी। प्रेमावश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकेला प्रेमावश करे शत जनेर काम। तो महाप्रभु जब कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे तो शत जन 100 लोगों का काम अकेले महाप्रभु कर रहे थे। अब जो व्यक्ति नाम नहीं ले रहा भगवान का, वो 100 लोगों का काम क्या अपना नहीं कर पाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, थक जाएगा, बस बहुत हो गया, टाइम देखेगा 8:30 बुलाया था तो 9 बज गए 10 बज गए, प्रसाद कब देंगे, चलो जलता हूँ ऑफिस जाता हूँ, लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए वो व्यक्ति क्या करेगा, कृष्ण कृष्ण नाम कहते हुए सफाई करेगा। तो हम और जंप करते हैं आगे इस कथा को। फिर आगे बताया गया है कि वहां पर जो व्यक्ति जिसने महाप्रभु का जल अभिषेक कर दिया, हेना काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल प्रभु चरण युग दिला घटा जल, उसने भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिया। अब भगवान को इस पर बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, मैं सवाई में बिजी था और आपने क्या कर दिया, मेरे पैरों पे पानी डाल दिया। ऐसे मस्ती करते हैं भक्त एक दूसरे के ऊपर ना, पानी डाल देंगे, उनके पांव छू लेंगे, इस तरह से मस्ती। लेकिन सेवा के टाइम पर नहीं, मस्ती करनी है सेवा से बाद में, सेवा करते वक्त, ये सेवा है गुंडीचा मार्जन। जितना जितना आप जमीन को साफ करेंगे, गंदगी साफ करेंगे, उतना उतना भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इस हृदय से कलमश निकलेगा। जितना जितना चाहते हैं आप कि स्थान में सदा सदा भगवान विराजमान रहे, तो इस हृदय की सफाई के लिए यहाँ साफ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ साफ करना पड़ेगा। बहुत कृपा है ये, वरना पूरा जीवन हरे कृष्ण मंत्र बोलने के बाद भी सफाई नहीं होती है। लेकिन महाप्रभु ने, क्योंकि वो महावदन्नाय अवतार है, बड़ी सरल विधि दी कि मंदिर की सफाई करने मात्र से एक दिन, वो भी साल भर नहीं, एक दिन साल में मंदिर की सफाई करने से क्या हो जाएगा, आपका हृदय कोमल बन जाएगा और उसमें सदा सदा जगन्नाथ विराजमान होंगे। और ऐसे व्यक्ति ने क्या कर दिया, महाप्रभु के चरणों में पानी डाल दिया। तो महाप्रभु ने क्या कहा, ए अपराध मोर कहे हबे गति, तुम्हारा गोड़िया करे एता का फजीती। ओ महाप्रभु ने कहा, मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण इसकी क्या गति होने वाली है, तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया है। तो कितने कृपालु हैं भगवान, भगवान हैं लेकिन फिर भी दीनहीन स्थिति भक्त की बता रहे हैं। भक्त को गर्वित नहीं होना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं तुमने मेरा मेरा जल ले लिया, अब पता नहीं मेरी क्या स्थिति होगी, तुमने मेरे पांव का जल ले लिया, तुम्हारा जो होगा तो होगा लेकिन मेरा क्या होगा। ऐसे करके महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि एक भक्त को बड़ा ही गर्वित नहीं होना चाहिए। चलो चलो धो लिया, चलो पांव का धो लो, पी लो पी लो पी लो, कोई मैं बड़ा हूं, ऐसा श्रेष्ठ नहीं। उन्होंने बड़ी दीनहीन भावना से उन्होंने दिखाया। ध्यान देने की बात है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु की भूमिका निभाने वाले भक्त को भी आंचर विग्रह के समक्ष ना तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, ना ही अपने शिष्य को अपना पांव धोने देना चाहिए, यही शिष्टाचार है। तो जो गुरु की भूमिका निभा रहा है, गुरु तो कोई है ही नहीं संसार में, भगवान सबके गुरु हैं, लेकिन जो गुरु की योग भूमिका निभाता है उसको भी भगवान के समकक्ष, भगवान के मंदिर के अंदर किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि मेरे पांव छुए। लेकिन लोग छूते हैं तो उनको मना कर देना चाहिए, हाथ जोड़ के कृपा करके ये सब मंदिर के सामने मत किया करिए, वो मान जाएंगे भक्त। नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है, जब नहीं मानते हैं तो भगवान ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा देखो इसने क्या कर दिया है। तो स्वरूप दामोदर ने क्या किया, तबे स्वरूप गोसाई तार घड़े हाथ दिया, ढेका मारी पुरारी बाहिर रख लिया। भगवान ने तो स्वरूप दामोदर को बुलाया तो उन्होंने उस गौड़िया वैष्णव की क्या करी, गर्दन पकड़ ली। मेरा दिमाग नहीं है, तूने क्या कर दिया, ये इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, और उठाकर उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया सेवा में से। चल तेरे में दिमाग नहीं है कि भगवान के साथ, बड़े वैष्णवों के साथ कैसे सेवा करनी चाहिए। और मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रार्थना करी कि व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। एक तरफ तो उन्होंने उसको धक्का भी मारा और अंदर आकर कहा भगवान उसे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि ठीक है आगे से ऐसा कार्य मत करना। तो उसके बाद में महाप्रभु ने बालू के कणों को चुनते हुए, हर एक के कूड़े को एकत्रित करते हुए, जिसका कूड़ा कम होगा उन्होंने कहा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। क्या जुर्माना है, तो जो भक्त कम सफाई करेंगे उनको मिठाई और खीर बना बना के अपने घर से लानी पड़ेगी। इस तरह से महाप्रभु ने कहा यह जुर्माना है, तो हम भी जुर्माना लगाएंगे। जो लोग आज सफाई नहीं करेंगे अच्छे से, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रसादम में सेवा करनी पड़ेगी। प्रसाद खाने नहीं दिया जाएगा, उनको सेवा करनी पड़ेगी, और सबसे आखिरी में प्रसाद दिया जाएगा उनको। इसलिए सबको सेवा करनी चाहिए। और अपने घर से अगर आप बना के लाना चाहते हैं तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर एक नरसिंह मंदिर था, उसकी भी सफाई करी गई। और सारे भक्तों ने सफाई करने के बाद में चारी दिके भक्त गणे करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करें प्रभु मत सिंह सम। शेर के समान महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे थे, सफाई हो गई मंदिर की, धुलाई हो गई मंदिर की, उसके बाद इतना चमक रहा था मंदिर, गुंडीचा मंदिर, कि महाप्रभु बीच में नृत्य करने लगे और सारे भक्तगण जोर जोर से कीर्तन करने लगे। किसी को प्रसाद की टेंशन ही नहीं है, हर एक भक्त कीर्तन में मग्न है कि मंदिर आज इतना चमक रहा है, सफाई हुई है, कल जगन्नाथ आएंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, सब प्रार्थना कीर्तन कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में कीर्तन हुआ और कीर्तन से क्या हुआ, बड़ी विशेष लीला महाप्रभु की यहां वर्णन है। जब सफाई हुई तो सारे भक्त के शरीर गंदे हो गए, उनके ऊपर धूल लग गई, भारी रूप से अंदरूनी रूप से सफाई हुई उनके हृदय की। लेकिन महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु जब भी कोई सेवा कर रहे हैं तो सिखा रहे हैं किस तरह से एब्जॉर्ब्ड होकर घुस करके हमें सेवा करनी है। तो महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो उनकी आंखों से क्या निकल रही थी, आंसू निकल रहे थे। चारी दिके भक्त अंगे केला प्रशालन, श्रवण मेघ ये न करे वर्षण। और उन्होंने मेघ की तरह वर्षा करी अपने आंसुओं से। और सारे भक्त जब कीर्तन में नृत्य कर रहे थे तो महाप्रभु घूमते थे गोल 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 गोल, और उनके शरीर से और उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे उससे सारे भक्तों का क्या हुआ, प्रक्षालन, सबने नहा लिया, एकदम साफ, पूरे शरीर की धूल हट गई। महाप्रभु ने सबका क्या किया, अभिषेक किया। तो आप करेंगे हमारे साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब कीर्तन के बाद आरती होगी और भगवान का दर्शन खुलेगा और भगवान को भोग लगेगा, उस समय भगवान सूक्ष्म रूप पर आप पर क्या करेंगे, अपनी कृपा वृष्टि करेंगे, आपके ऊपर क्या कर देंगे, आपकी गंदगी को साफ कर देंगे और हृदय को तो पूरा एकदम निर्मल सुपर वाइट बना देंगे, पूरा चमाचम। लोग भी बोलेंगे मेरा हृदय तेरे हृदय से सफेद क्यों नहीं है, तेरा हृदय मेरे हृदय से सफेद कैसे, इस तरह से लोग बोलेंगे। वो सफाई बतानी पड़ेगी कि ना निर्मल लगता है इसमें, ना ऋण लगता है इसमें, ना इसमें सर्फ लगता है, इसमें क्या लगता है, श्रद्धा लगती है। और श्रद्धा मात्र करने से क्या होता है, सारी हृदय की सफाई हो जाती है। तो 5 मिनट और ले सकते हैं प्रभु जी। तो इसमें बताया गया है कि महाप्रभु ने सुंदर तरीके से कीर्तन और नृत्य करने के बाद में क्या किया, सभी लोगों को बोला कि अब बैठ करके हम भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे। पुलिन भोजन कृष्ण पूर्व यच्छा केला, सही लीला महाप्रभु मने स्मृत हैला। जिस तरह भगवान कृष्ण ने सेवा करी और सारे भक्तों को, जब सुबह सुबह कृष्ण निकलते थे तो सारे ग्वाल सखा बैठ करके क्या करते थे, भोजन करते थे। और बीच में कृष्ण बलराम बैठते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान कृष्ण और बलराम बीच में बैठते थे और उनके चारों तरफ ग्वाल सखा बैठ करके भोजन खाते थे। तो ऐसे ही महाप्रभु ने कहा कि जिस तरह से भगवान खाते थे वैसे ही हम भी उस लीला का स्मरण करते हुए आज खाएंगे। तो सारे लोग सर्कल बनाकर लाइनों में बैठ गए और उसके बाद भगवान बीच में बैठ गए और भगवान ने सेवा शुरू करी, खुद बांटते थे और खुद खाते थे और उसके बाद सारे भक्त अपना अपना प्रसाद खाने लग गए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रसाद को ग्रहण किया। अब सारे वैष्णवों ने जब प्रसाद खाने से पहले, कुछ लोग जो सेवा करते वो रह गए थे और महाप्रभु खा चुके थे, तो महाप्रभु ने क्या किया, तबे प्रभु सर्व वैष्णव नाम लया, महाप्रसाद देना महा अमृत सिखाया। महाप्रभु ने क्या किया, तत्पश्चात सारे वैष्णवों का नाम ले लेकर बुलाया, हरि बोल इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सर्वभौम भट्टाचार्य अरे मिश्रा इधर आओ, सारे भक्तों को बुलाया और क्या कहा, मेरा जो प्रसाद है महाप्रसाद अब आप ग्रहण करो। तो जो सेवा कर रहे थे वो तो मेवा मिल गई उनको, तो उन्होंने कहा जो पहले बैठे उनको तो नहीं मिला, हमारे ऊपर तो क्या हुआ, आंसुओं से भगवान ने अभिषेक किया, हमारे हृदय की सफाई हुई क्योंकि हमने मंदिर मार्जन किया, और अब क्योंकि हमने प्रसाद की सेवा करी तो हमको महाप्रभु का क्या मिला, महाप्रसाद मिला। तो सूक्ष्म रूप से आप सबको भी आज जो जो सेवा करेंगे महाप्रभु का महाप्रसाद मिलने वाला है अनेकों अनेकों तरीके से। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने सिद्धांत बताया है, तो हम कुछ समय 5 से 10 मिनट में सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निवापनम। जो ये दावग्नि लगी हुई है पूरे संसार में, अगर आप इससे निवारण चाहते हैं तो अपनी चेतना का जो दर्पण है, अपने हृदय का जो दर्पण है उसको साफ करिए। और इस ही हृदय के अंदर गंदगी भरी हुई है। उन्होंने कहा हृदस्थो ही अभद्राणी, इसके अंदर अभद्रा भरी हुई है। और जब हम सुभद्रा की सेवा करेंगे तो ये अभद्रा चली जाएगी और इसमें सुभद्रा आ जाएगी। और क्या अभद्रता भरी हुई है, इसके अंदर गंदगी ही गंदगी है, अनर्थों की गंदगी, काम इच्छा, क्रोध, लोभ। पूरे साल लोग पूछते रहते हैं मेरा काम कैसे खत्म होगा, मेरा लोभ कैसे खत्म होगा, मेरा गुस्सा कैसे खत्म होगा। लेकिन जब उनको विधि बताई जाती है तो वो सोचते हैं इससे क्या होने वाला है। तो श्रद्धा के जो सर्फ है, साबुन है, उसी से मंदिर मार्जन करना है। और साथ में श्रवणम स्वकथाम कृष्णम, जब हम इस कथा का भी श्रवण करेंगे मंदिर मार्जन की। तो कई लोग हैं जिन्हें ऑफिस जाना होगा लेकिन वो सेवा नहीं कर पाएंगे, भौतिक कार्यों में बंधे हुए हैं, तो उन्होंने अगर इस मंदिर मार्जन की कथा भी श्रवण करी, हाँ, तो कहते हैं श्रवताम स्वकथाम कृष्णम पुण्यम श्रवण कीर्तनम, खाली उनको पुण्य मिल जाएगा, उनकी सफाई हो जाएगी कथा सुनने मात्र से। और यदि में अगर कूड़ा करकट भरा हुआ है, खलपतवार भरी हुई है, तो फिर इसको निकालने का मतलब है कि अब हम अपने जीवन से अन अभिलाषिता शून्यम हो जाए, कोई भी अभिलाषा ना रहे, कोई लिस्ट लेकर भगवान के आगे ना जाएं। जगन्नाथ जी का लोग बुलाते हैं, रथ यात्रा निकलती है ना, अरे अरे रस्सी छू लो, रस्सी छू लो, इससे तुम ना स्वर्ग चले जाओगे, इससे तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। हाँ, ये सच बात है कि रस्सी छूने से व्यक्ति को बहुत बड़ी कृपा मिलती है, भगवान के मंदिर मार्जन में सिर्फ हाथ लगाने से, सिर्फ कथा का कुछ मात्र सुनने से कृपा मिलती है। लेकिन भगवत धाम व्यक्ति वही जाएगा जो व्यक्ति भगवान का प्रिय बंधु होगा, हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता। इसके अंदर कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर खाली एक्टिविटी होता तो हमारी सोसाइटी का नाम होता इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णास एक्टिविटीज, कार्य, लेकिन चेतना नहीं होता, कृष्ण भावनावित नहीं होता, कृष्ण कार्यवित, कृष्ण भावनावित संघ की जगह होता कृष्ण कार्यवित संघ, जिसमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। नहीं, ये कृष्ण भावना है, आप कार्य का करते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी भावना, आपने किस इच्छा से इस सेवा को किया है। और जितना भौतिक उन्नति हमें मिलती है, जितना हमें ज्ञान बढ़ता जाता है, जितने हम सीनियर होते चले जाते हैं, उतना ज्यादा डर होता है गंदगी का बढ़ने का, कम होने का नहीं। जो नया भक्त होता है ना, वो श्रद्धावान क्यों होता है, उसे लगा दो करछी उठाने में तो भी करता है सेवा, उसे लगा दो पुस्तकों का बैग उठाने में तब भी करता है सेवा। लेकिन जब वो सीनियर बन जाता है, जब वो पुराना हो जाता है, तो उसमें गंदगी बढ़ जाती है, पुराने आइटम में गंदगी ज्यादा हो जाती है ना, और वो गंदगी इतनी हो जाती है कि अब उससे कोई छोटी सेवा करने को कह दो तो कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूं। खैर, भगवान के आगे और बोल दो एक बार कि आप जान गए हो कि आप कौन हो, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि हम कौन है, फिर भी बोलते हैं तू जानते मैं कौन हूं। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं आप आत्मा है और हम भी आत्मा है और हम सब भगवान के दास हैं, ये आप भूल गए हैं प्रभु जी। ये हमें एक दूसरे को इस तरह से एहसास बोलना नहीं है, लड़ाई हो जाएगी वरना मारपीट भी हो सकती है, लेकिन ऐसा आपको एहसास करना है, प्रभु जी नहीं समझ रहे हैं तो हम तो समझें। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, संसार विषन अले दीवानिशी ही अजले जुड़ाई ते ना के नो पाए। वो कह रहे संसार में विषय और विष भरा हुआ है पूरे में, और सारा दिन उस ही विष के कारण मेरा हृदय जलता रहता है और कोई उपाय नहीं दिखता। तो महाप्रभु ने सरल उपाय दिया, क्या? गुंडीचा मंदिर मार्जन। गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब जिस स्थान में जगन्नाथ रहने वाले हैं, भगवान रहने वाले हैं, उस स्थान का मार्जन। तो भगवान दो स्थानों में रहने वाले हैं, कहाँ? एक तो मंदिर में और दूसरा, हाँ जी, दूसरा कहाँ रहने वाले हैं? इधर वाले लोग सो रहे हैं तो उनको सोने पर कृपा मिलेगी, जगने वालों को जगने की कृपा मिलेगी। तो हृदय में भगवान रहते हैं हमारे और वहां रहने वाले हैं। तो भगवान तो शुरू से हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, फिर प्रभु जी हम सफाई करके परमात्मा को दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं इस हृदय के अंदर? परमात्मा साक्षी पक्षी है, सिर्फ साक्षी है, आपकी फ्री विल, आपकी आजादी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो करना चाहते हैं करिए, जो व्यक्ति काली की पूजा करना चाहता है, परमात्मा बैठकर उसको काली पूजा में श्रद्धावान बनाते हैं। लेकिन जब कोई मांगता है भगवान से, भगवान आइए मेरे हृदय में, स्वयं कृष्ण आइए मेरे हृदय में, और जो तीन जगह से टेढ़े भगवान है वो जब हृदय में आते हैं तो आना मुश्किल है ना। टेढ़ी चीज को किसी जगह घुसाना हो तो मुश्किल होती है ना, लेकिन घुसाना तो फिर भी आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। तो एक बार अगर भगवान कृष्ण आ गए तो फिर वो जीवन भर के लिए नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उनको जाने से पहले, वो आएंगे तब, वो इतने टेढ़े हैं, आते ही तब हैं जब वो स्थान कैसा होगा, एकदम कोरा चिट्टा साफ। और वो साफ तब होगा जब अनर्थ समाप्त होंगे, और जब तक अनर्थ है तब तक हम सिर्फ एक्टिविटी लेवल पर कार्य कर रहे हैं, चेतना के लेवल पर अभी कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए कितने साल हो जाते हैं जप करते करते, मंदिर मार्जन हर साल करते हैं, फिर भी देखते हैं भक्त कुछ सालों बाद में लड़ाई झगड़े गुस्से और अनेक लालच ऐसी इच्छाओं में देखे जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम चेतना के स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रसाद खा रहे हैं, चेतना के स्तर पर नहीं खा रहे हैं। उसको किस इच्छा पे खा रहे हैं, पेट भरने ए वचा, सिर्फ पेट को उधर भरण के लिए खा रहे हैं। उसको इसलिए नहीं खा रहे हैं कि ये भगवान का प्रसाद है। अगर वो प्रसाद है तो फिर व्यक्ति ये नहीं बोलेगा हाँ प्रभु जी क्या लेंगे महाप्रसाद में, और फिर दूसरा भी नहीं कहेगा हाँ वो हलवा दे दो खीर दे दो। वो कहेगा जो इच्छा हो थोड़ा सा, बस इच्छा है भगवान की दे दीजिए। ऐसी इच्छा जिसकी है उसके ऊपर महाप्रभु कृपा करने वाले। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर ना आ जाए। तो एक तो उन्होंने हृदय से बालू को निकलवाना सिखाया और साथ में जो मंदिर के बाहर थे उसको भी दूर फेंकवा दिया। हाँ तो इस तरह से हमें भी करना है कुछ कार्यों पे काम। तो बताते हैं कि एक तो हमें हरिनाम लेना है, अंदर की सफाई करनी है, और साथ में इन चीजों पर भी काम करना है। तो बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, कूटी नाटी प्रतिष्ठा जीव हिंसा निषेधवाचार काम, हाँ तो ये सारी चीजें पूजा लाभ, इन चीजों के ऊपर हम काम करें। तो ये बाहर से गंदगी को फेंकना है, अंदर से तो आपने हरि नाम से गंदगी साफ कर दी, और मंदिर के बाहर इस शरीर रूपी मंदिर के बाहर जो है उसको भी सफाई करनी है ना। तो भौतिक इच्छाओं से हमें समाप्त होना पड़ेगा, तब जाकर मंदिर के बाहर की सफाई शुरू होगी। हरदास ठाकुर की नकल करते हैं कुछ भक्त प्रतिष्ठा पाने के लिए, हाँ जप करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वृंदावन में वास करते हैं। हम तो महीने भर प्रभु जी वृंदावन में ही थे, एकांतिक भक्ति कर रहे थे। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर ने मना किया, श्रील प्रभुपाद जी ने भी कई बार मना किया कि भक्तों को भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका हृदय निर्मल हो गया हो लेकिन अभी गंदगी बाहर बहुत है। पूजा प्रतिष्ठा ये आपको वापस अनर्थों को लाने में आपकी मदद करेगी। तो आप चाहते हैं अगर अनर्थ आए तो इनमें आप फंसे रहिए, बाहर की गंदगी सफाई मत करिए। लेकिन अगर आप सफाई करेंगे तो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ करके भजन करना ये भौतिक लाभ की इच्छा है ना। तो भौतिक लाभ है कि मैं प्रचार कार्य को बंद कर दूं और बैठकर भजन करूं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी कभी वृंदावन ना जाएं, भजन ना करें, भक्तों के संग में जाएं, जप करें उन स्थानों पे, लेकिन ये नियम ना बना लें कि 15 दिन मंदिर से बाहर ही रहते हैं, सेवा ही नहीं करते, गायब रहते हैं। सेवा करने से हमारी जो ये लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, जीव हिंसा की जो हमारी ये सारी कार्य है, ये सब बंद हो जाएंगे, मंदिर के बाहर की सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमें करना चाहिए, और प्रसाद बांटकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए उत्सव मनाना चाहिए। और भगवान जो है हृदय में जब आरूढ़ हो जाते हैं तो आप देखेंगे सफाई करने के बाद एक अलग ही उत्साह होगा भक्तों के हृदय में, क्योंकि उनके हृदय की जब सफाई होती है तो बड़ा हल्का महसूस करते हैं अपने शरीर को, नाचते हैं कूदते हैं। तो महाप्रभु ने भी कहा कि हमको क्या करना है, उसके बाद प्रसाद बांटकर हरे कृष्ण का कीर्तन करके उत्सव को मनाना है। और सफाई के दौरान महाप्रभु ने स्वयं लोगों को प्रताड़ित भी किया और प्रशंसित भी किया। जो लोग अच्छी सफाई करते थे उनकी बड़ी प्रशंसा करी, और जो लोग गंदी सफाई कर रहे थे या गंदा काम कर रहे थे या सफाई नहीं कर रहे थे उनको डांटा भी। अब लोग बोलेंगे एक तो हम सफाई करने आए ऊपर से हमें डांट भी दिया, हाँ तो हम लोग तो महाप्रभु नहीं इसलिए डांटते नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है जो आचार्य का कार्य कर रहा है, गुरु का कार्य कर रहा है, शिक्षा का कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को भी सिखाना चाहिए महाप्रभु की तरह। कि जो लोग मस्ती कर रहे हैं उन लोगों को डांटे कि क्या मस्ती कर रहे हो, मस्ती मत करो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तुम लोग क्या करो इस सरल विधि का उपयोग करो, मंदिर का मार्जन करो। जिस तरह से अम्बरीश महाराज हमेशा ही अपने मंदिर का मार्जन करते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने सुबह उठकर उनसे पहले उनके मंदिर का मार्जन कर दिया, तो आंसुओं से रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि अब ढूंढो वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे मंदिर का मार्जन कर दिया। उनका नियम था मंदिर मार्जन करना, करोड़ मंदिर मार्जन आज शु अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे। और उन्होंने कहा मेरी सेवा किसी ने छीन ली तो आंखों से आंसू निकलने लगे, और जब पता चला कि पत्नी ने किया है तो फिर उनको जाके हाथ जोड़े, वैष्णवी आपने एक बार तो मेरी सेवा छीन ली, आगे से ऐसा मत करना, मेरी सेवा मत छीनना, आप मुझे मेरे भगवान की सेवा से दूर कर रही हो, आप क्या तो धर्म है पति का कि पति जिस सेवा में है उसमें सहयोगी बने, आप मुझे दूर कर रही हो। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज करोड़ मंदिर मार्जन आदि जो अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, तो आज हमें भी सब भक्तों को मिलकर के इस शुक्ल प्रथमा दिवस को, जिसको कहते हैं क्या, जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर यात्रा, गुंडीचा मार्जन यात्रा, इसको अच्छे से निभाना है। कीर्तन करते हुए, गप्पे ना करते हुए, जप ना करते हुए क्या करना है, सेवा करनी है, सेवा के भाव से सेवा करनी है। गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहते हैं और जगन्नाथ मंदिर को नीलांचल कहते हैं। तो नीलांचल से सुंदराचल जब जाते हैं तो भक्त और भगवान दोनों कैसे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, ब्यूटीफुल, है ना। नीलांचल से सुंदराचल जाते हैं तो भक्त कैसे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। तो आप भी सुंदर भक्त बनना चाहते हैं तो जगन्नाथ जी की सेवा के लिए मंदिर का मार्जन करिए कीर्तन करते हुए। इंग्लिश में एक वर्ड आता है जैगरनॉट, जानते हैं आप जैगरनॉट, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम जगन्नाथ। एक्चुअली जगन्नाथ प्राचीन शब्द है हमारे शास्त्रों में, और अंग्रेजों ने उसमें से एक वर्ड लिया जगन्नाथ से, जैगरनॉट। आप गूगल में सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो जैगरनॉट का मतलब है हैवी व्हीकल्स, जो बड़ी बड़ी लॉरीज होती है ना, जिसमें बड़े बड़े 22 पहिए 25 पहिए 30 पहिए ऐसे वाले जो ट्रक हैं उनको बोलते हैं अंग्रेज लोग जैगरनॉट लॉरीज। तो उसका मतलब है जब भगवान भारी भरकम रथ पे निकलेंगे तो वो है असली जैगरनॉट ट्रॉली, जिसपे सबसे भारी, सब पर भारी जगन्नाथ निकलने वाले हैं, है ना। तो ऐसे जगन्नाथ को हम वेलकम करेंगे मंदिर की सफाई करके, साथ में कीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की। श्री श्री गौर निताय की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा।